बाबा हमेशा मनसा सेवा के लिए कहते हैं कि कहीं भी जाओ, किधर भी जाओ, कोई और सेवा नहीं है तो मनसा सेवा तो हमेशा ही कर सकते हैं। तो हमारे इस विषय को स्पष्ट करने के लिए हमारे सामने हैं आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी, बहुत पुराने भाई हैं हमारे। अपने युवा अवस्था में जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे तब आप बाबा के ज्ञान के सानिध्य में आए, आपने बड़ी लगन से इस ज्ञान को समझा और तब से ही लेके आपने बहुत से इस जब आने के बाद बहुत से ऐसे कुछ क्रिएटिव, कुछ इनोवेटिव इस प्रकार के कार्य किए और उस कार्य करने के निमित्त बने। वैसे आप ONGC में थे और ONGC से आपने वहां से वॉलंटरी अपना रिटायरमेंट को या रेजिग्नेशन को वहां से दे दिया और तब से लेकर एज ए प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर, ज्ञान सरोवर के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के रूप में यहां पर रहते हैं। और यूं आप जो हमारा साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है उसके आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और आपने बहुत सारी एग्जीबिशंस, हम ये तो बहुत सारी एग्जीबिशन है, पहले तो एक ही एग्जीबिशन होती थी हमारी, अभी तो बहुत सारी हैं। जैसे आपको मालूम है ना, आध्यात्मिक सशक्तिकरण इंजीनियर विंग की अपनी एग्जीबिशन है और भी कई एग्जीबिशंस हैं जो इन्होंने अपने ही बुद्धि से और बाबा के ज्ञान को सामने रख के उनको बनाया, उन चित्रों को बनवाया, ऐसे कई कार्य किए हैं। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पर्यावरण श्री अवार्ड में मिला हुआ है। साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग के कई कार्यक्रम जो हैं सरकार के साथ मिलकर विज्ञान भवन में होते हैं, उनका भी श्रेय आपको और इनके साथ जो टीम है उनको जाता है। इस तरह से बहुत ही अनुभवी हैं और कुमार हैं, तो आज आपको अपने अनुभव के आधार पर, मनसा सेवा का तो विषय बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आपको अपने अनुभव के आधार पर इस विषय को स्पष्ट करेंगे कि मनसा सेवा क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या बेनिफिट है और हम उसको कैसे कर सकते हैं। आदरणीय भ्राता मोहन सिंगल जी, और हम उनका एक हाथ की ताली से पहले स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन।
ओम शांति। हमारे साथ मिलके सब एक बार ऐसे ओम शांति बोलेंगे जैसे हम सब ने सुना है यज्ञ में शुरू में ओम ध्वनि किया करते थे। तो आइए ये यात्रा को हम आदि से शुरू करें। ओ बाप दादा, हम बच्चों को प्रतिदिन ज्ञान की पराकाष्ठा की ओर लेते चलते हैं और सबसे बढ़िया साधन, ताजा साधन कौन सा है जो अमृत वेले से ही शुरू हो जाता है? याद के बाद जो मुरली बाबा की होती है उस मुरली में रोज ही नई नई खुराक मिलती है। आज की खुराक में ऐसी कौन सी बात थी जो हम सब के माइंड में रहती ही है सदा कि हमें ऐसा बनना है? कोई भी स्कूल में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो लक्ष्य बुद्धि में रहता ही है। तो यहाँ पर बाबा ने जो भी हमें ज्ञान सुनाया है, हम सबका एक लक्ष्य तो सदा रहता ही है। कौन सा? बाप समान बनना। और आज का स्लोगन भी क्या था? स्लोगन में क्या था? ब्रह्मा बाप समान बनना, अर्थात क्या? संपूर्णता को प्राप्त करना। तो ये तो हम सब की बुद्धि में रहता है कि हम सब भी संपूर्ण बन जाएं। विजय माला का मणका बन जाए, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर ले, फरिश्ता स्वरूप बन जाए, तो हम सबकी बुद्धि में ये तो रहता ही और ये सोच के ही हम सब पढ़ाई पढ़ते हैं। तो जब ये बुद्धि में रहता है तो हमारी जो हर एक्टिविटी है वो हमारी ऐसी होनी चाहिए जो हमें उस तरफ लेती जाए। आज तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है, बाबा का परिवार, लेकिन साकार बाबा को जैसा हमने देखा, जैसा जाना, अपनी आंखों से देखा, और इतना ही नहीं, अंतिम कर्मातीत अवस्था के दिन भी 17 और 18 जनवरी 1969 को जैसा बाबा को देखा, जो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, उसके आधार पे हम इस विषय से हम कुछ लिंक करते हुए वो अनुभव आपके साथ कुछ वो शेयर ऐसे करते हैं जो हम सब को मंशा सेवा द्वारा कर्मातीत अवस्था प्राप्त करना बड़ा सहज हो जाए। विद्यार्थी भी जब पढ़ता है तो बीच बीच में अपने को चेक करता है कि कोई विषय याद हुआ, हम लोग भी पढ़ते थे, फिर किताब बंद करके फिर याद करा करते थे, भूलते थे, कभी लिख करके याद करते थे आदि आदि। ऐसे ही पहली बात तो ये होनी चाहिए कि हमें बीच में हमें अपनी चेकिंग करते रहना चाहिए कि हम कितना कर्मातीत अवस्था फरिश्ता स्वरूप स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं। और बाबा में ये बात हमने देखी कि बाबा लगभग प्रतिदिन ही बीच बीच में भी बहुत इंटेंस रीति से अपने को चेक करता जाता था। हम सब ने भी यज्ञ के इतिहास में तो ये सुना है, पढ़ा है कि सबने सुना होगा जब गुलजार दादी जी 8-9 साल के ही थे, पहली जब वतन में गए और जब पहली बार सूक्ष्म वतन का राज खुला तो उन्होंने वहां सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा बाबा को देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे बाबा यहाँ कहाँ से आ गए, बाबा तो हमारे साथ रहते हैं, सबने सुना हुआगा। तो जब वो नीचे आए तो उन्होंने मम्मा को कहा कि मम्मा आज मैंने वहां बाबा को देखा, लेकिन वो बाबा बड़े तेजोमय थे, शकल सूरत सब ऐसी थी, बहुत तेजोमय। मम्मा को भी मालूम नहीं था, इसका रहस्य तब तक खुला नहीं था, तो मम्मा ने कहा बाबा से पूछो। तो फिर वो बाबा के पास गई, बाबा को कहा बाबा आप तो यहाँ हमारे साथ रहते हैं, मैं आज जब ध्यान में गई तो वहां मैंने आपको देखा। अच्छा बच्चे क्या देखा? कि बाबा शक्ल सूरत तो सब आपके जैसी ही थी, लेकिन बहुत तेजोमय रूप था उनका, और बहुत ऐसा लगता था जैसे शांति की शक्ति की किरणें पूरे फूट रही है। बाबा को भी मालूम नहीं था इसका राज, तो बाबा ने कहा अच्छा बच्ची नेक्स्ट टाइम जब जाओ तो उन्हीं से पूछना कि आप कौन है। तो नेक्स्ट टाइम जब गए और तब जब दादी ने पूछा तब उन्होंने बताया कि सबको मालूम है मैं उसी ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूँ, और जब ब्रह्मा संपूर्ण बन जाएगा तब वो बिल्कुल मेरे समान हो जाएगा, तब मेरे में और उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। तो बस उस दिन से ही बाबा को ये लगन लग गई कि मुझे वैसा बनना है। और बाबा बीच बीच में जब भी संदेशी जाती थी कई बार चेकिंग कराते थे, बच्ची अब देखना अब मेरे में और उनमें कितना अंतर है, अब आके बताना। तो ऐसे बाबा का पुरुषार्थ चलता रहा, और संदेशियां बताते हैं जितना जितना समय बीतता जा रहा था अंतर कम होता जा रहा था, और लास्ट में तो बस जब बाबा जब संदेशी वतन में जाती थी तो वो बताती थी बस बाबा बिल्कुल वैसे ही नजर आते हैं जैसा हम सूक्ष्म वतन में अव्यक्त वतन वासी ब्रह्मा को देखते हैं। तो केवल ये ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। हम सब का भी सूक्ष्म शरीर संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप जैसे शरीर वतन में है, इस बात को हम बुद्धि में रखें और अपने उस स्वरूप को सदा बुद्धि में रखें और अपने से तुलना करते चले। और ये सब तुलना जितना जितना हम करते चलेंगे वो स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम बढ़ते चले जाएंगे। तो एक तो हम ये देखते चले कि मेरे में वर्तमान में और जो मेरा अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप है उसमें कितना अंतर है, उसको विजुअलाइज करें, देखें। और बाबा ने आज भी जैसे विजुअलाइजेशन की बात करे कि उसको विजुअलाइज करो, देखो अपने ज्ञान के तीसरे नेत्र से अपना संपूर्ण स्वरूप देखते चले। तो ये विजुअलाइजेशन सब मन से होता है। तो सबसे पहले मनसा सेवा की जरूरत हमें अपने लिए है। ब्रह्मा बाबा ने भी यही करा। बाबा ने जब 1936-37 में ज्ञान में आए और भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं कि मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है और उसके लिए कह भी बहुत सारी चीजें दी हैं मन के लिए कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत, मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी कह दिया है मन मना भव, कोई तन मना भव, धन मना भव, संबंध मना भव नहीं, मन मना भव। तो मन, ये सब तो मन के लिए कहा ही है, लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया मन को वश करना बहुत मुश्किल है, बहुत चंचल है। और बाबा ने भी शुरू में 36-37 में जब ये ज्ञान का स्पष्टीकरण और होता गया तो बाबा ने अनुभव किया वास्तव में मन चाहते हैं बाबा में लगाना लेकिन मन भाग जाता है, बार बार पकड़ के लाना पड़ता है। तो बाबा ने क्या किया मन को वश करने के लिए, क्या किया, मन को पत्र लिखा। फिजिकली बाबा ने पत्र लिखा, उस पत्र की बाबा ने तो सिंधी में पत्र लिखा जैसे बाबा पत्र लिखा करते हैं, देखे होंगे आप सबने भी साकार पत्र। लेकिन 1936-37 की बात है तब बाबा ने मन को पत्र लिखा, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करके हम पुराने भाई बहनों को दिया गया था। क्या लिखा बाबा ने पत्र मन को, गौर से सुनना कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरी बात पूरी माननी चाहिए, लेकिन तूने मुझ आत्मा राजा को इतना कमजोर कर दिया और तू इतना बलशाली हो गया कि तेरे कहने पर, तेरे पीछे पीछे मैं आत्मा राजा होकर भी तेरे वशीभूत हो गई, तेरे पीछे पीछे भागती रही, तू जहां जहां कहता रहा मैं आत्मा तेरे पीछे पीछे जाता रहा, तूने मुझे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन हे मन, अब मैं तुझे कह देता हूं कि अब मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूं, हो गया हूं, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा, मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूं, तू मंत्री है और मुझ राजा के कहने पर तुझे चलना पड़ेगा। ऐसा बाबा ने मन को ऑर्डर का पत्र लिखा। ऐसी बाबा ने फिर बुद्धि को भी पत्र लिखा कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के साथ साथ भागती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझ राजा को इतना कमजोर कर दिया कि मैं तुम्हारे वशीभूत हो गया, तेरे कहने पर जो तुम कहते थे वो मैं करता चला गया। यद्यपि मैं राजा हूं लेकिन मैं बहुत कमजोर हो गया था, लेकिन अब मैं तुझे भी कह देता हूं हे बुद्धि, अब तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा क्योंकि मैं राजा हूं, तुम मेरे मंत्री हो, बुद्धि सेनापति है, संस्कार सैनिक है। मन मंत्री है, बुद्धि सेनापति, और तुझे सेनापति को भी मेरे कहने पर ही चलना पड़ेगा क्योंकि मैं राजा हूं। ऐसा बाबा ने ऑर्डर किया। और उसके बाद बाबा ने ये महसूस किया धीरे धीरे कि मन और बुद्धि बाबा के पूरे कंट्रोल में होते चले गए। तो आज भी बाबा ने कहा ना, बाबा को फॉलो करो संपूर्ण बनने के लिए। तो हमें भी ये देखना है कि मन मेरे कहने पर चलता है, मेरी आज्ञा को, हर आज्ञा को मानता है, या मैं मन के पीछे पीछे भागता हूं, मैं आत्मा राजा हूं। तो बाबा ने जब ये करा, हम अनुभव करते हैं, हम सबका है कि न चाहते भी मन संपूर्ण रीति से हमारी आज्ञा का पालन नहीं करता। क्लास में आते हैं, लाल लाइट भी हो जाती है, गीत भी अच्छा बजता है, योग करने बैठते हैं, वातावरण भी बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मन सारे दिन में जो जो दिनचर्या में कोई बातें हुई है उधर भाग जाएगा, कहीं जिधर लगाव झुका होगा उधर भाग जाएगा, या जहां कटुता होगी कहीं ना कहीं मन को हजार ठिकाने, मन बार बार उधर भाग जाता है। तो एक तो ये चेक करते चले, और ये कब होगा? बाबा ने कहा मन को, मन हमारी बात क्यों नहीं मानता? कोई बड़ा ऑफिसर भी होगा, आज जो है दो तीन दिन पहले ही प्रधानमंत्री बदले भारत के, तो आज मनमोहन सिंह की बात कोई दूसरे, उसका ऑर्डर चलेगा क्या? नहीं। तो यही बात बिल्कुल मन की है। गवर्नमेंट का भी कोई बड़ा ऑफिसर हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब तक वो सीट पर रहता है सब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, और जब वो सीट पर नहीं रहता, ट्रांसफर हो जाता, रिटायर हो जाता या अलग हो जाता है, कोई उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता। तो मुझ राजा की भी आज्ञा का पालन मन बुद्धि क्यों नहीं करते हमेशा? क्योंकि मैं अपनी सीट पर स्थित होकर के उसे ऑर्डर नहीं करता। तो अपने स्वमान की सीट पर स्थित होके हम मन को ऑर्डर करें, और फिर देखें आप जो ऑर्डर करोगे, जिस शक्ति को ऑर्डर दोगे, वो शक्ति तुरंत चली आएगी। पुराने जमाने में कहते थे ना, राजा वगैरह बैठते थे, तब तो ये घंटी या ऐसा लाउड स्पीकर नहीं था, बस राजा ताली बजाता था, दासी आती थी, राजा हुक्म देता था भाई फलाने दासी को या फलाने को बुलाओ, वो आते थे, फिर राजा ऑर्डर करता था, उस ऑर्डर का पालन होता था। ऐसे ही हम भी जब भी योग में बैठे हैं, तो पहले सुमान की सीट पर स्थित होकर के उसके बाद फिर किसी शक्ति का, गुण का आवाहन करें जिसकी हमें आवश्यकता है। और पहले अच्छी तरह, बाबा ने इतने सुमान दिए हैं, बस यही सुमान रहे, मैं विजयी आत्मा हूँ, कलप कलप की विजयी हूँ, बाबा आपने मुझे कलप पहले भी ऐसे ही समानधारी बनाया था, विजयी बनाया था, आज भी बना रहे हो, और कलप कलप मैं विजयी बनती रहूंगी। बाबा जब आज भी बाबा ने कहा ना, कभी समान की सीट पर कौन सा, कभी सखा सखी के रूप में बाबा से बात करो, कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, कभी वो हमारा जीवन साथी है, हमारा पूरा साथ दे रहा है, आदि आदि भिन्न भिन्न रूपों में जितना याद रखेंगे, वैरायटी देंगे, तो देखेंगे मन को भी वैरायटी मिल जाएगी। मन को भागता क्यों है? क्योंकि हम वही पुरानी बात याद, बस मैं आत्मा हूँ, आके बैठे शांत स्वरूप हूँ, वही बात ही अगर दो चार चीजें याद रखी तो मन को भी नई खुराक नहीं मिलती। एक ही खाना रोज रोज खाते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। वैरायटी होता है तो मन को भी खुराक जो है, हम रोज वैरायटी खुराक दें। आप देखो, वैरायटी खुराक देंगे, सामान देंगे, फिर मन कैसे हमारी सब बात को मानता है। एक तो ये है, दूसरा क्या है, और साथ साथ जो बाबा ने करा कि बाबा ने ना मन को ऑर्डर जब देते थे बाबा, तो पहले बाबा ने भी क्या अभ्यास किया, हम सबने जीवन में सुना है ना, बाबा ने क्या अभ्यास किया लिख लिख करके, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, निर्मला आत्मा है, लेकिन उसका प्रमाण क्या कि बाबा को वो अभ्यास पक्का हो गया। कोई भी चीज का प्रमाण होना चाहिए ना। स्टूडेंट कहे मैंने पढ़ाई बहुत की, लेकिन अगर फेल हो गया तो क्या पढ़ाई की। डॉक्टर कहे मैंने ऑपरेशन बहुत अच्छा किया, लेकिन पेशेंट अगर मर गया तो क्या ऑपरेशन अच्छा किया। ऐसे ही अगर हमने भी मन को वाकई वश किया हुआ है, आत्मा अपने को समझा है, तो उसका प्रमाण होना चाहिए ना। हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। तो बाबा का तो ये प्रमाण था कि जब हम आते थे यहाँ पर 1961-62 से यहाँ आना शुरू किया जब ज्ञान में आए, तो बस बाबा कहीं भी मिलते थे, चाहे इधर हिस्ट्री हॉल में मिले, चाहे अपने कमरे में, चाहे झोपड़ी में, बस कई बार बाबा यहाँ चलते चलते भी मिलते थे और बाबा कहते आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे, जैसे चित्र लगा है ना, और ऐसे बाबा हाथ फैला देते थे और हम सब बस चुंबक की तरह जैसे खींच करके चले आते थे। चलो ये तो हुआ, लेकिन वंडर तो तभी होता था जैसे ही बाबा ने दृष्टि दी, बाबा की भाव में आए, विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे। फिर बाबा ऐसे धीरे धीरे थपथपाता था जरा, हाँ बच्चे आओ आओ आओ। कोई आत्मा जाती नहीं थी, लेकिन जो आत्मा विदेही हो गई, अशरीरी हो गई, फिर बाबा जैसे शरीर में खींचता था। फिर जब अपने को शारीरिक अवस्था में अनुभव करते थे, फिर बाबा हालचाल पूछता था, टोली खिलाता था, और एक जाता था दूसरा आता था। लेकिन वंडर यही था, हर एक को ये अनुभव होता था थोड़े समय के लिए भी मैं विदेही अशरीरी। क्यों? क्योंकि बाबा खुद इतनी स्ट्रांग आत्माभिमानी स्थिति में स्थित था कि जिसको भी दृष्टि देता था वो आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाता था। तो ये है अपने को चेक करने का भी साधन कि हम जब आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर किसी को भी दृष्टि दे, बात करे, तो हमारा ऑरा भी इतना शक्तिशाली हो जाता है, लाइट का ताज भी हमारा शक्तिशाली, और एक एक वाइब्रेशन इतने पावरफुल निकलते हैं कि दूसरे को भी उसी स्थिति में स्थित कर देते हैं। अभी लास्ट ईयर ही कुछ महीने पहले, 7-8 महीने पहले हम रशिया गए हुए थे, तो सेंट पीटर्सबर्ग में वहां पर जा काफी दिन वहां भी रहना हुआ था, 4-5 अलग अलग शहरों में जाना हुआ। तो सेंट पीटर्सबर्ग में एक इंस्टीट्यूट है, किरलियन इंस्टीट्यूट, कई वर्षों से वो इस क्षेत्र में कार्यरत है और किरलियन फोटोग्राफी मशहूर है। तो उन लोगों ने भी एक दिन टाइम लिया हुआ था, आए अपने सब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, और उनके पास ऐसा कैमरे ऐसे है कि जैसे जब वो फोटो निकालते हैं तो व्यक्ति के फोटो के साथ उसका लाइट का ऑरा भी आ जाता है। जैसे हम देवी देवताओं के चित्रों में देखते हैं ना, श्री राम, श्री कृष्ण है, हनुमान है, देवी देवताएं जितने हैं सबको एक लाइट का ताज दिखाते हैं, ऐसे ही वो लाइट भी आ जाती है। केवल यहीं पर ही ऑरा नहीं, वो कहते हैं शरीर के अंग में ऑरा होता है, तो सहज रीति से वो उंगलियां जो होते हैं ना तो रखवाते हैं, तो उंगलियों के साथ साथ उंगलियों का ऑरा लाइट। और वो लाइट किस बात का प्रतीक है? जैसा व्यक्ति का चिंतन चलता है, मंशा होती है, वैसा उसका ऑरा होता है। जिसकी मंशा सतोप्रधान है, अच्छी है, ज्ञान युक्त है, तो उसका ऑरा लाइट कलर का होता है, गोल्डन कलर का, येलो कलर का, और बहुत ऐसा जो चित्रों में दिखाते हैं, जैसे व्हाइट से लेकर गोल्डन येलो। और जिनके मन के अंदर कोई विकार हैं, तूफान हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि आदि, तो उनका ऑरा ये डार्क कलर का होता है और हेजी होता है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं, बड़े डार्क कलर का, और ये जो ऑरा होता है ये बड़ा डिफाइन होता है। तो काफी देर तक, लगभग 1.5-2 घंटे तक वो पूरा का पूरा सारा टेस्ट करते रहे, और उसने बताया कि भाई हम दुनिया में सब जगह गए हैं, सब जगह टेस्ट है, यहाँ पर भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ब्रह्मा कुमारी के भी आते हैं, लेकिन हमने देखा कि जितना ऑरा, कुछ लास्ट ईयर दादी जानकी भी गए थे कि दादी जी का भी ऑरा देखा, आपका देखा, और जो बड़े बड़े भाई बहने आते हैं जगदीश भाई का आदि आदि, तो केवल आप लोगों में ही ऐसे लोग हैं जिनका ऑरा ऐसा होता है जो पवित्रता को रिफ्लेक्ट करता है। बाकी सब के जो ऑरा आते हैं, बड़े बड़े सन्यासी भी आते हैं, उनका ऑरा लेते हैं, तो उनके अंदर कोई ना कोई विकारों की प्रवेशता, उनके काफी सारे पैरामीटर हैं और 70-80 पेज की वो पूरी रिपोर्ट इसमें देते हैं। तो मुझे बाबा की वो बात याद आ गई, बाबा ने कहा था, मुरलियों में कई बार कहा है कि अंत में विज्ञान भी आपके मंशा की स्थिति को सिद्ध करेगा और तब दुनिया मानेगी कि हाँ ये ही है, ये ही है। अभी तो क्या बोलते हैं कि ये भी है, यानी कि ब्रह्मा कुमारी वाले भी है, आध्यात्मिक स्वामी नारायण है और राधा स्वामी है, आदि आदि अलग अलग धर्म वाले हैं, सबको मिला देते हैं, एक जैसा कर देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे विज्ञान हमारे एक एक ब्रह्मा कुमार भाई बहनों के पास जाकर के इस बात को सिद्ध करके दुनिया के सामने रिजल्ट रखेगा, जो अब वैज्ञानिकों के सामने तो काफी क्लियर हो गई, लेकिन दुनिया के सामने अभी उसकी प्रत्यक्षता और बाकी है। तो ये तो उसका एक पहलू रहा। बाबा को हम क्या देखते थे कि जब बाबा से पहले मिलते थे 62-63 में, तो बाबा को अपना बाबा समय देते थे, मिलते थे, हालचाल पूछते थे, और हम लोग जो प्रश्न पूछते थे बाबा उन सबका उत्तर देते थे, समाधान करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा था, बीच में 65, 66, 67 वगैरह 1967 आदि में, बस बाबा के सम्मुख जाते थे, बस थोड़ी सी कुछ बात बोलते थे तो बाबा कहता था बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, अपनी बात बताई नहीं शुरू किया है, नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, ऐसा है ना। तो थोड़ा थोड़े में बाबा सारी बात समझ जाता था, लेकिन जैसे जैसे बाबा संपूर्णता की तरफ बढ़ते जा रहे थे, तो मुझे ये सौभाग्य मिला। मैं इंजीनियरिंग के बाद उन दिनों आसाम में पोस्टेड था, बहुत दूर था, लेकिन बाबा ने अपने पास अंत समय बुला लिया, तो दो दिन 17 और 18 जनवरी को पूरा बाबा के पास थे, कोई और बाहर पार्टी नहीं थी। तो बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। क्या मिला? बस बाबा के पास जाते थे, वहां कोई टीचर बहन नहीं थी, खुद ही क्लास चलाते थे। कलकत्ता पास में पास सेंटर था, वो भी 2,000-3,000 किलोमीटर दूर, तो इसीलिए बिल्कुल अलग, लेकिन बहुत अच्छी सेवा हो रही थी वहां पर। उस समय 1967-68 में उस समय लगभग 100 की क्लास थी, उस समय की बात, जबकि हमारे भाई बहन बहुत कम होते थे। तो बाबा ने अंतिम समय जैसे पास बुला लिया, लेकिन क्या आश्चर्य देखा, हमेशा जाते थे आज बाबा से ये बात करेंगे, बाबा से सेवा की बात करेंगे, अपनी पर्सनल उन्नति की बात करेंगे, योग की स्थिति की बात करेंगे। बस बाबा के सम्मुख गए, बाबा ने थोड़ा यूं दृष्टि दिया और दृष्टि देके, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा 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 कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा। यानी कि एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी और पूरी बात बाबा मन में क्या चल रहा है वो समझ जाता था और उसका समाधान दे देता था। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, इन दो दिनों में 7 बार ऐसा हुआ। बाबा से अलग अलग जगह मिलते थे, कोई पार्टियां नहीं थी जैसे अभी दादियों से मिलते हैं। तो ये है स्थिति का प्रतीक, मन जीते जगत जीत स्थिति का। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन को इतना बाबा ने जीत लिया था, अपने मन के अंदर कोई संकल्प नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या, तो जो भी व्यक्ति सामने आता था उसके मन के भाव को परख करके उसका समाधान कर देते थे। तो अपने को भी अब ये देखते चलना है कि मैं भी कितना बस इच्छा मात्रम अविद्या होता चला जा रहा हूँ या होती चली जा रही हूँ। बाबा ने कहा अगर भले शुभ इच्छा भी है, सेवा बढ़े, हमारे फलाने संबंधी ज्ञान में आ जाएं, आदि आदि, तो ये इच्छा भी भले, लेकिन इच्छा तो इच्छा ही है ना। जिस समय हम योग में बैठे हैं या मुरली सुन रहे हैं, उस समय मुरली में ही पूरा ध्यान रहे, योग में है योग में ही ध्यान रहे, लेकिन उस समय अगर सेवा की भी मन के अंदर प्लानिंग चल रही है तो ये भी व्यर्थ संकल्पों की श्रेणी में आ गया। भले विकारी संकल्प नहीं बाबा कहते हैं, लेकिन व्यर्थ संकल्प की श्रेणी में आ गया। तो अभी हमें मंशा को इस हद तक ले जाना, और बाबा उसका सबूत थे। बाबा को देखा, उसके बाद हमने दादी जी को देखा, दादी जी के पास मिलना होता था, जाना होता था, और बस दादियां भी ऐसी स्थिति में आ गई थी। हाँ देखो, आज ही मैं याद कर रही थी कि फलाने भाई से काम है, देखो वो भाई आ गया, आज फलानी को याद किया वो आ गए। यानी मंशा इतनी पावरफुल हो, हम संकल्प वाइब्रेशन भेजे और वो व्यक्ति खिसता हुआ हमारे पास चला है। तो ये बीज में धीरे धीरे चेक करते चलना है अपने को कि मेरे मन के अंदर और व्यर्थ संकल्प तो नहीं है, इतनी मंशा पावरफुल होती चली जा रही है। एक तो बाबा का ये देखा 17 और 18 जन, और क्या देखा बाबा, ये कब हुआ, जब बाबा धीरे धीरे समेटते चले आ रहे थे। पहले जब मिलते थे 62-63 में बहुत विस्तार, यानी कि हर कार्य बाबा जैसे उनकी डायरेक्शन में होता था। धीरे धीरे देखा बाबा पावर्स को डेलीगेट करते जा रहे थे और खुद अधिक से अधिक समय अपना सेवा में रहे, मंशा सेवा में अधिक से अधिक समय। और उसका प्रमाण भी क्या होता था, आपने सुना होगा, एक हमारे दादा विश्व किशोर जी थे, हा? यज्ञ के शुरू के बहुत मुख्य भाई, रक्षक जैसे। तो उनका कुछ ऑपरेशन बंबई में हुआ तो वहां पर, तो वहां से रमेश भाई फोन करा करते थे, बाबा ऑपरेशन हो गया लेकिन कल रात इन्हें बिल्कुल नींद नहीं आई, बहुत दर्द हुआ। और 67-8 में तो उस समय इतने पेन किलर और इतनी मेडिकल साइंस एडवांस भी नहीं थी। तो फिर अगले दिन बाबा उन्हें योगदान जग करके किया करते थे, तो उनका वहां से आता था कि बाबा आज ये बड़ी शांति से, बहुत ही आनंद, अच्छी नींद सोए हैं। अगले दिन बाबा और निसंकल्प हो जाते थे, चलो अभी बच्चा ठीक हो गया है। जब इधर से बाबा का योगदान नहीं होता था, फिर वो उस शक्ति का अभाव महसूस करते थे। तो हमारे भी मंशा सेवा हो या कोई भी चीज हो, उसकी हर जगह चेकिंग होती चलनी चाहिए कि वो कितनी इफेक्टिव है, कितना कार्य कर रही है। हमें भी उसका सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन डेवलप होगा कि हाँ, संतुष्टता होगी कि हाँ मेरी मंशा सेवा वहां तक चल रही है। और क्या, क्योंकि बाबा ने कहा है अभी आप बच्चों के सामने, अब पेपर तो बाबा ने बहुत बताए हैं, अपने पुराने स्वभाव संस्कार के पेपर हैं, 5 तत्वों के पेपर हैं, 5 विकारों के हैं मोटे रूप में, कुछ अतृप्त भटकती हुई आत्माओं के हैं, आदि आदि अनेक पेपर बाबा ने बताए हुए हैं, हम सब जानते हैं। लेकिन वर्तमान समय के मुताबिक बाबा ने 2 पेपर्स के लिए विशेष अभी चेतावनी दी हुई है मुर्दियों में। एक पेपर है हमारे अपने शरीर का पेपर, कि ये ऐसा पेपर है जो व्यक्ति को ना बिल्कुल जैसे ऐसा बना देता है निरुत्साहित, कई बार शरीर के रोग, व्याधियां, कष्ट। तो इसीलिए बाबा ने कहा एक है शरीर की व्याधियों का पेपर। ये ना समझें जो वृद्ध नहीं है, युवा है, कि हमारे सामने थोड़ी आएगा बीमारियों का, लेकिन 63 जन्मों का द्वापर युग से हमने जो भी विकर्म किए हुए हैं वो तो आत्मा में इकट्ठे हो गए हैं ना, उन सब को अभी इस एक जन्म में ही उनके सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। तो ये पेपर आता है तो इसको बड़ा स्पोर्टिंगली ले कि बस ये पेपर हमें पूरा आधा कल्प के लिए निरोगी बनाने के लिए आया हुआ है। और उसकी पहचान क्या है, बाबा ने कहा बाबा को देखते थे, बाबा से जब पार्टियां मिलने के लिए आती थी तो पार्टी आती थी तो बस टाइम दिया होता था भाई 10 बजे बम्बई पार्टी, 10:30 बजे दिल्ली पार्टी, 11 बजे कलकत्ता की पार्टी आए, आदि आदि ऐसे होता था। तो बस संदेशी अपने समय के मुताबिक आती थी तो बाबा, या जैसे बताया जहां भी बाबा का मिलने का होता था देखती थी बाबा बैठे हैं अपने, बस मगन अवस्था में, और आंख खुली भी है, संदेशी आके सामने खड़ी भी हो गई है, फिर भी बाबा जैसे अपनी लगन में मगन है। अब टाइम हो गया होता था तो संदेशी कहती थी बाबा बाबा, तो बाबा को कई बार जैसे जर्क सा लगता, हाँ बच्ची अच्छा आ गए, हाँ हाँ पार्टी कहाँ है, पार्टी बाहर है, बाबा बुलाए, हाँ हाँ तो पार्टी को बुलाओ। फिर पार्टी आती थी, बाबा एक एक से मिलते थे, टोली खिलाते थे और हालचाल पूछते थे, फिर पार्टी चली जाती थी। तो भाव क्या है कि शरीर में आना और शरीर से जाने का ये अभ्यास जितना पक्का होगा उतना हम शरीर के सभी पेपर्स को सहज पार कर लेंगे। तो चलो अभी शरीर से न्यारा होने का भी 2-1 मिनट और अभ्यास करें कि मैं आत्मा इस शरीर से बिल्कुल न्यारी। तो एक ये अभ्यास बहुत आवश्यक है कि जब चाहे हम शरीर में आए, आके पार्ट बजाएं, और जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाएं। ये अभ्यास बाबा का तो इतना पक्का था, बताया ना कि बस देह से इतना न्यारे हैं, आंख भी खुली हुई हैं, लेकिन बुद्धि से जैसे कहीं और हैं, सामने आके भी कोई खड़ा हो जाता था तभी भी कई बार ऐसी स्थिति होती थी जैसे न्यारी और प्यारी। तो ये अभ्यास हमें अंत समय में एक बहुत मदद देगा। तो एक तो ये पेपर बाबा ने बताया है, और दूसरा पेपर बाबा ने बताया है जितना परिवार बढ़ता जाता है ना, तो परिवार की तरफ से पेपर। तो परिवार की तरफ से कैसे पेपर, कि बस जब किसी की हम अवस्था देखते हैं, बहुत पुराना भाई बहन भी है लेकिन कोई ऐसी बातें उसके जीवन में देखते हैं जो उतनी मर्यादा युक्त नहीं है, तो मन में एकदम संकल्प आता है, अरे इतने पुराने भाई, इतनी पुरानी बहन, अभी भी ये बात, अभी भी इनमें क्रोध, अभी भी ऐसा, तो फिर मन के अंदर व्यर्थ संकल्प चलते हैं, संशय कई बातों में उठने लगता है। तो बाबा ने इसके लिए क्या कहा है, इस पेपर से पार होने के लिए 2 बातें बड़ी सहज। एक तो बात कि हर आत्मा को हम कभी भी एक काल की दृष्टि से न देखें, वर्तमान काल, बल्कि तीनों कालों की दृष्टि से देखें, कि वर्तमान समय भले अभी ये आत्मा ऐसा पार्ट बजा रही है लेकिन ये वही आत्मा है, कल पहले वाली डबल ताजधारी आत्मा, और अभी इसका ये पार्ट है, फिर अपने नेचुरल स्वरूप में जब स्थित होगी फिर आत्मा का अच्छा पार्ट होगा। और दूसरी बात बाबा ने इसमें ये बताई है जो बाबा ने कहा है, बाबा ने क्या कहा है कि मेरा जो लास्ट में लास्ट बच्चा भी है वो आज के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि मैंने उसे चुना है, उसके अंदर कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आज दिख नहीं रही हैं लेकिन समय पर प्रत्यक्ष होंगी, और मेरे निगाहों ने उसे देखा, भगवान कहते हैं मैंने उसे चुना है। और ये बात अगर हमें सदा ख्याल रहे, किसी भी आत्मा का कोई भी पार्ट देखें नहीं, ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता। तो ये सदा बात बुद्धि में रहेगी कि बाबा का बच्चा बना है, आज भले उसकी अवस्था में कुछ ऊपर नीचे है लेकिन भगवान का चुना बच्चा है। वैसे भी बाबा कहते हैं ये सृष्टि नाटक ड्रामा मुझे अति प्रिय है, तो नाटक में हरेक का पार्ट, कोई भी फिल्म भी होती है नाटक होता है, पूरी फिल्म में एक जैसा पार्ट थोड़ी होता है। भाई कोई हीरो होते हैं, कोई हीरोइन है, कोई विलेन है, कोई कॉमेडियन है, हंसने गाने वाले नाचने वाले अलग अलग होते हैं, तभी फिल्म की वैरायटी होती है। ऐसे ही हमारा ये नाटक भी जो है ना, सृष्टि नाटक भी बहुत एक्यूरेट बना है। बाबा ने कहा है हरेक का पार्ट भी जो है उसको सदा साक्षी होकर देखते रहे, एक ये बात बाबा ने बताई है। तो इसीलिए हरेक को हम तीनों कालों की दृष्टि से, और ये भगवान की चुनी हुई आत्मा है, जब इस नजर से देखते हैं तो फिर कभी भी किसी के प्रति हमारे व्यर्थ संकल्प नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा है संकल्प और समय ये दो बहुत बड़े से बड़े खजाने हैं, इसको व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो कभी भी हमारा संकल्प भी व्यर्थ न चले, और संकल्प व्यर्थ चलेगा तो समय भी वेस्ट होगा। तो इसीलिए ये दोनों खजाने हमें बचाते चलते जाना है। और क्या करना है मनसा सेवा में, मनसा सेवा करेंगे कैसे? बाबा ने भी कहा है ना, हाँ कुछ दिन पहले इसी सीजन में बाबा की मुरली चली ना, कि कोई भी एरिया सेवा से वंचित ना रह जाए। सबने सुनी है ना, अब हरेक तो बाहर की सेवा कर नहीं सकता, लेकिन हमें बनना है विश्व महाराजन। इसीलिए पहले जमाने में भी जब विश्व महाराजन किसी राजा को बनना होता था तो क्या करते थे, क्या उपाय होता था जो शास्त्रों में भी है, वो अश्वमेघ यज्ञ रचते थे। रामचंद्र जी का भी आता है ना, उन्होंने भी अश्वमेघ यज्ञ रचा। तो जो भी चक्रवर्ती महाराजा महारानी बनना होता था उसको अश्वमेघ यज्ञ, और अश्वमेघ यज्ञ में क्या होता था, बस यज्ञ करने के बाद क्या करते थे, घोड़ा एक छोड़ देते थे, घोड़े के तख्ती लगी होती थी कि फलाने राजा ने अश्वमेघ यज्ञ रचा है चक्रवर्ती राजा बनने के लिए, और ये घोड़ा उन्होंने छोड़ा है, जो उनकी अधीनता को स्वीकार करता है वो इस घोड़े को जाने दे और घोड़ा अपने आप चलता जाएगा, और जो इसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता राजा की वो हमारे साथ युद्ध करे। तो घोड़े के पीछे पीछे राजा की सेना चलती थी और सामने जो दूसरे कमजोर राजा थे वो राजा रास्ता दे देते थे, जो कोई चाहता था कि नहीं मैं भी बलशाली हूँ युद्ध करता था। ऐसे हम सब भी होवनहार चक्रवर्ती महाराजा महारानी है ना, हम लोगों ने भी यह अश्वमेघ यज्ञ रचा है। हमारे यज्ञ का क्या नाम है, पूरा लंबा चौड़ा नाम है ना, क्या है, राजस्व अश्वमेघ कुछ रुद्र अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ कुछ ऐसा है, शायद इसमें और भी कुछ एडिशन हो तो बताइएगा, राजस्व अश्वमेघ। तो ये ही घोड़ा जो मन को भी कहा गया है ना, घोड़ा यही छोड़ा हुआ है, हमारे पीछे पीछे सारी दैवी शक्तियों की सेना चल रही है, जो बाबा ने हमें दैवी गुण बताए हैं वो सारे दैवी दिव्य शक्तियां, और सामने माया की सेना तैयार खड़ी हुई है। तो कभी माया की सेना इस मन रूपी घोड़े पर काबू पा लेती है वो तो हार जाते हैं, कभी हमारी जो अपनी सेना है वो शक्तिशाली होती है माया की सेना पर, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि हैं उनसे हमारा निरंतर युद्ध चलता रहता है। तो ये जो है हमें देखना है कि ये हमारा अश्वमेघ यज्ञ है, इंडिविजुअल भी है यज्ञ पूरा तो है ये हमारा ब्राह्मण परिवार का, लेकिन हमने इंडिविजुअल जो इंडिविजुअली तो राजा महाराजा महारानी बनना है, इस कारण से इस अश्वमेघ यज्ञ को देखते चलना है। ये मन रूपी घोड़ा कभी भी माया के वशीभूत दूसरे वो उसे अपने वश में ना कर ले। और क्या इसमें करना है, देखना है जब ये राजा बनना होता है ना, तो जैसे यहाँ पर मैं बता रहा था बाबा का हमने देखा अंतिम दिनों में, और बस इतना संकल्प महान शक्तिशाली हो गए थे कि किसी को बोलने की भी आवश्यकता नहीं होती थी, जो सम्मुख आता था मन के भाव पढ़ के उसका समाधान कर देते थे। ऐसे ही 18 जनवरी के दिन अंतिम दिन बाबा अपनी मुरली चला रहे थे, ये सामने हिस्ट्री हॉल है ना यहाँ पर, तब तो 20-25 भाई बहन होते थे यहाँ मधुबन में, ज्यादा रहते ही नहीं थे, तो हम भी आए हुए थे अपने लौकिक पिताजी के साथ, तो बस सामने बैठ के मुरली सुन रहे थे, बाबा मुरली चला रहे थे। वैसे लौकिक में बाबा की उम्र भी उस काफी थी, 93 इयर्स की, और उम्र की वजह से बाबा को खांसी भी कई बार काफी आया करती थी, तो पहले भी कई बार देखा था खांसी आती थी, गला साफ हवा को आवश्यकता होती थी। हंसी में बाबा क्या कहते थे, खांसी क्या है सबको मालूम है ना, क्या है, बाबा की सखी। लेकिन विशेषता क्या होती थी वो मैं बताता हूँ, कि खांसी आई, कई बार खांसी में ऐसा लगता था बाबा को बहुत तकलीफ हो रही, आंख भी गीली हो जाती थी, लेकिन दूसरे ही क्षण क्या होता था, बस बाबा के यहाँ पर ट्रांसलाइट का एक पिक्चर रखा है, अभी भी रखे हुए हैं, लक्ष्मी नारायण के ट्रांसलाइट का पिक्चर श्री कृष्ण का, तो बस बाबा कहता था देखो बच्चे अभी ये पुराना शरीर है ना, शरीर में ये व्याधि होती है, खांसी आती है, तकलीफ होती है, कल को बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, लक्ष्मी नारायण जैसा बनेगा, बस क्या दुनिया होगी। एकदम अपनी स्वस्थिति से बाबा परिस्थिति को तुरंत ही बदल देता था। थोड़े समय पहले, कुछ मिनट पहले भी जो खांसी इतनी प्रभावशाली हो रही थी, कर्म भोग के रूप में आ रही थी, और बाबा की स्वस्थिति इतनी शक्तिशाली, उसको तुरंत बदल के फिर बाबा हंसी में कहता था बच्चे देखो इतनी खुशी हो जो जीवन में कभी भी कोई रोना ना हो, गम ना हो। और खुशी में बच्चों को क्या करना चाहिए, हाँ बोलो, खग्गियां मारनी चाहिए। बाबा करके दिखाता था। एक बार बाबा ने पूछा बच्चे खग्गियां कैसे मारते हैं जानते हो, कैसे, नहीं बाबा सिंधी शब्द है ना, कैसे मारते हैं खग्गियां, सुना होगा ना, मतलब अंदर की खुशी ऐसे हो बाबा करके, ओ कल चेहरे पर अंदर की खुशी का भाव ऐसा प्रकट हो, कल मैं जाके ऐसा बनूंगा, ऐसी बनूंगी, तो दुख की लहर ना हो। तो ये मन की अवस्था पर निर्भर करता है, इसी बात को मतलब शास्त्रों में भी कहा है, मन की स्थिति को मान अपमान निंदा स्तुति दुख सुख हानि लाभ जय पराजय सब में मन की स्थिति समान रहे। ये प्रत्यक्ष होना चाहिए, दिखना चाहिए, और ये बाबा के और दादियों के चेहरों से कोई भी बड़ी से बड़ी बात हो जाती थी, कभी भी बाबा के चेहरे पर शिकन। हमें याद है एक बार कलकत्ता में, मुरली में भी आता है ना, प्रदर्शनी वगैरह करी, कोई हमारे और बहुत मित्र आर्य समाजी मित्र, उन्होंने आग लगा दी तो सब जल गया प्रदर्शनी और टेंट वगैरह। तो हमारे तीन मुख्य भाई वकील हुआ करते थे, संत राम जी, गुप्ता जी और मोती चंद जी आदि, तो उन्होंने बाबा को बोला बाबा हम इन पर केस करें, जरूर हम जीत जाएंगे, पक्का जीतेंगे। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे ना? ऐसी बाबा की सुना समाचार, सारा सुनाने वाले के चेहरे पर दुख के भाव और वो सब आ रहे थे, लेकिन बाबा का चेहरा बिल्कुल वैसा ही है, नहीं बच्चे कोई बात नहीं, वह ज्ञानी है, उन्हें मालूम थोड़ी है कि किसका नुकसान किया है, क्या किया है। हर व्यक्ति को एक ये, जिसका मन में जितनी शक्ति होगी उसमें एक ताकत विशेष होगी, कौन सी, क्षमा करने की। हर मनुष्य जब पैदा होता है ना, कहते हैं दो शक्तियां विशेष होती है, कौन सी दो शक्तियां, एक है याद रखने की शक्ति, दूसरा भूलने की शक्ति, हर एक में होती है। लेकिन विडंबना यह है कि जो बात हम याद रखना चाहते हैं वो तो भूल जाते हैं, और जो बात भूल जानी चाहिए वो बरसों तक याद रहती है। किसी के साथ कोई खराब बात हुई, बदला लेने की भावना, अहंकार की आदि आदि, ये बहुत समय तक याद रहती है। तो बाबा कहता है भूलने की शक्ति का भी भाव क्या है, किसी की भी हम कमी कमजोरी को भूल सके, उसे क्षमा कर सके। इसीलिए कहते हैं क्षमा वीरों का गुण है, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा, कमजोर होगा, वो क्षमा नहीं कर पाएगा। इसका मतलब उसके मंशा शक्ति की बहुत कमी है उसमें। तो अभी हम भी अपने में ये चेक करते चले हैं कि कोई भी ऐसी आत्मा तो नहीं है जो मुझे याद आती है अपने व्यवहार के कारण उसने मेरे साथ खराब किया है, उसको देख करके हमारे मन में भी वैसे ही भाव जगे। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से अंतिम दिन बाबा मुरली चला रहे थे, तो उस दिन की मुरली की ये विशेषता थी, उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी नहीं आई। जबकि उस दिन सुबह भी बाबा ने मुरली नहीं चलाई, बहुत तबीयत मतलब खराब थी, ठीक नहीं थी, एक दिन पहले भी बाबा को, लेकिन उस दिन एक बार भी खांसी नहीं। तो वो इस बात का प्रतीक है कि कर्म भोग के ऊपर योग बल ने जैसे संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली। अंतिम समय है तो ये हम सबका भी होना है। तो जो शारीरिक व्याधि से कभी भी घबराए नहीं, उन पर योग के प्रयोग हम करते चले, जो बाबा कहता है अपने शरीर के ऊपर, दूसरों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर, प्रकृति के तत्वों के ऊपर, ये तो एक अलग विषय है बहुत बड़ा, कैसे योग के प्रयोग किए जाए। लेकिन ये करते चलें और देखते चलें कि वो कितने हमारे अनुरूप होते चले जा रहे हैं। तो बाबा अंतिम दिन बाबा को एक बार भी खांसी, फिर बाबा उठे और देखो हम सामने बैठे हुए मुरली सुन रहे थे, मेरे मन में एक संकल्प आया, ये है देखो कर्मातीत अवस्था वाली और मन जीते जगत जीत वाली आत्मा के लक्षण, जिसने मंशा सेवा में मतलब ऐसी क्षमता प्राप्त कर ली है अपने संकल्प कहीं भी पहुंचा सके। तो मेरे मन में संकल्प आया सुनते सुनते कि बस वाह क्या ही अच्छा हो, बाबा कुछ हमारे लिए और डायरेक्शन दे सेवा के लिए, हमारी उन्नति के लिए कुछ नाम लेके बाबा बोले। तो बस मन में जैसे ही संकल्प आया, तुरंत ही अब वो आत्मा तो कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर चुकी थी ब्रह्मा बाबा, तुरंत ही बस कुछ सेकंड में ही बाबा ने मुरली में नाम लेकर के वो चला दिया कि देखो ये बच्चा मोहन है आदि आदि, बहुत मीठा है, कभी किसी की निंदा नहीं करेगा आदि आदि, बाबा ने बहुत हमारे लिए गाइडलाइन दे दी नाम लेकर के। ये है कर्मातीत अवस्था और मंशा सेवा जिसकी पावरफुल होगी, मंशा शक्ति जिसमें अपनी चरम सीमा पर होगी, उसके लक्षण है। वो दूसरी आत्मा के मन में क्या भाव चल रहा है उसको तुरंत परख करके उसका समाधान कर देगा। तो हमें भी अंत में ये देखना है, क्योंकि अंत में हम सबको भी ब्रह्मा बाबा की तरह पार्ट बजाना है। और बस बाबा के सम्मुख आते थे जैसे, ऐसे हमारे सम्मुख हम सब ब्रह्मा बाप समान जब हो जाएंगी, हमारे सम्मुख लोग आएंगे और बाबा ने कहा है उनके रूप परिवर्तन हो जाए। बाबा में भी यही देखा, अंतिम दिन का वर्णन करते हैं, बाबा ने मुरली पूरी करके बाबा उठे और दरवाजे की तरफ चले। हिस्ट्री हॉल कोई बड़ा तो नहीं है, बस बाबा उठ करके हर बच्चे को योगदान करने लगे। दादी जी सामने बैठी हुई थी, दादी प्रकाशमणि जी, बार बार बाबा की दृष्टि वहां आके रुक जाती थी, एक एक बच्चे को बाबा, फिर बाबा एक दो कदम बढ़े फिर रुक गए, फिर एक एक बच्चे को शक्ति देने लगे। 18 जनवरी की रात की बात है, फिर बाबा एक दो कदम चले, दरवाजे तक जाते जाते बाबा 3-4 बार रुके और बस हर बच्चे को देखें, क्योंकि बाबा को तो, शिव बाबा को तो ये मालूम था ये साकार में मेरा ये अंतिम मिलन है, बस इस समय बच्चों से जो भी मिलन मना रहा हूँ फिर तो ये कलबबादी होना है। और बाबा दरवाजे तक जाके फिर बच्चों को देख करके फिर बाबा ने क्या कहा, सबने सुना है क्या कहा, हाँ बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये पहली बारी बाबा ने शब्द बोले। अब बाबा चले गए अपने कमरे में और जाके देह त्याग किया। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि बाबा ने 18 जनवरी के अर्ली नाइट में शरीर छोड़ा, 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद बाबा का संस्कार किया गया। जब बड़ी दीदी टूर पर थे वो आए, उसके बाद ये संस्कार किया गया। लेकिन बाबा के शरीर में कहीं भी न कोई कालापन आया, न कोई दुर्गंध आई, बदबू आई, न शरीर में कहीं अकड़न आई। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है ना, तो शरीर स्टिफ हो जाता है, अकड़ जाता है जैसे। क्योंकि हमने तो 21 तारीख को हम जो कुछ भाई लोग यहाँ पर थे, वरिष्ठ भाई लोग वगैरह, उन सब ने बाबा को स्नान आदि करा के, जहाँ आज शांति स्तंभ है वहाँ अग्नि संस्कार किया गया था बाबा का। लेकिन न कोई बाबा को इंजेक्शन दिया गया, न कोई केमिकल लोशन लगाया गया, कुछ नहीं। लेकिन 3 दिन के बाद भी बाबा का शरीर वैसे ही चमकता हुआ लगता था, जैसे बाबा सो रहे हैं और अभी उठ के हाथ फैला के कहेंगे, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, जैसे बाबा हमेशा करते थे। तो ये है प्रकृति जीत का लक्षण। क्योंकि जगत जीत जब हम कहते हैं, जगत के अंदर तो ये प्रकृति भी आ गई, 5 तत्व भी आ गए। तो इसलिए ये प्रत्यक्ष बाबा का देखा, जिसने जितना जितना मन को जीता हुआ होगा उतना उतना ये प्रकृति जीत भी वो होता जाएगा। बच्चे, प्रकृति अपनी हलचल दिखाएगी, 5 तत्वों से बना हुआ ये प्रकृति का ही तो शरीर है। लेकिन यही हमारा सबसे निकट का साथी है, सतयुग के आदि से लेकर कलयुग अंत तक यही 5 तत्वों के भिन्न भिन्न नाम रूप में मिलते हैं। तो ये हमारा सबसे निकट, तो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना ये बहुत बहुत आवश्यक है, मन जीते जगत जीत के हिसाब से। इसने बाबा का देखा, बस बिल्कुल पूरा ये 5 तत्वों के बने शरीर ने पूरा का पूरा बाबा को सहयोग दिया। कैसे हम इस शरीर को भी अंत समय, क्योंकि गायन क्या है, अंत मते सो गति का, हम सबका पुरुषार्थ ही उस एक क्षण के लिए हो रहा है जब हमारे प्राण स्तन से निकलेंगे, पूरा पुरुषार्थ। और उस अंतिम क्षण में ही अगर हमें कोई और याद आ गए, देहधारी याद आ गए, कोई वस्तु व्यक्ति वैभव आदि याद आ गया, तो वैसे ही दुर्गति हो जाएगी, वैसे ही जन्म हो जाएगा। तो हमें ये देखना है अंत समय कैसे हमारे जब प्राण निकले हमारी इच्छा से निकले। जो इच्छा मृत्यु का किसे वरदान था महाभारत में, भीष्म पिता में, ऐसे ही ब्रह्मा बाबा तो भीष्म पिता में समान थे। तभी तो बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, कह के बाबा गए। लेकिन हम एक एक भी आत्मा भीष्म पिता में, कोई भाइयों की बात नहीं, बहनों की, आत्मा तो भीष्म, इच्छा मृत्यु से हमारी हो, हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े, तब अंतमते सोगति होगी। अगर अभी बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है, भूचाल आया, छत गिर गई, गर्डर गिर गया पूरा, हाहाकार मच रहा है, हड्डी टूट गए, तो ऐसे में अंतमते सोगति क्या होगी, दुर्गति हो जाएगी। तो हम इच्छा से, और बाबा ने कहा है इच्छा मृत्यु उन बच्चों की होगी, किनकी, जो बच्चे ना जिनका वॉइसलेस कनेक्शन बाबा के साथ होगा। जैसे अभी वायरलेस कनेक्शन, मोबाइल से कहीं बात कर लेते हैं, तो जितना जितना हमारा वॉइसलेस निर्विकारी बुद्धि का कनेक्शन बाबा से होगा, तो अंत में जितनी भी विकट परिस्थितियां होंगी हमारे पैर उधर ही बढ़ेंगे जिधर सेफ्टी होगी, जिधर हमारा कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, और बस परिस्थितियों को देखते ही अच्छा बाबा अब आपके पास आ रहे हैं, अपनी इच्छा से हम शरीर छोड़ के, तो वो अंतमते सोगते। तो उसके लिए क्या है, ये जो 5 तत्व है ना, इनको भी हम अपना मित्र बना ले, बाबा ने जैसे मित्र बना लिया था। बहुत लंबी बातें होती हैं, लेकिन एक बात एक तत्व की, हाँ मानो जिस हर तत्व को मित्र बना लेंगे तो ये तत्व हमारे प्राण लेने के निमित्त नहीं बनेंगे, ये अंत समय में हमारी सहायता करेंगे संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कराने में। मानो अंत में बाबा ने कहा है, बहुत भूचाल हो गए, धरती बहुत हिलेगी, और किसको क्या मालूम प्राण कब तन से निकले, क्या परिस्थिति हो। तो धरती को भी हम अपना मित्र बना लें, उसके लिए धरती का विशेष गुण कौन सा है, सहनशीलता। और सबसे बड़ी बात है धरती की, धरती दाता है, धरती में दातापन का गुण है। एक बीज बो उससे पेड़ निकल आएगा, हजारों बीज पैदा हो जाते हैं, हजारों फल फूल हो जाते हैं, दाता। ऐसे ही हम देखते चले, मैं भी अगर धरती के समान दातापन का गुण धारण कर लूंगी ना आत्मा, तो क्या होगा, कोई भी आत्मा हमारे सामने आए हम दाता बन के उसे देते चले। दाता बन के देने का मतलब कोई स्थूल चीज नहीं, शुभ भावना, शुभ कामना, सद्भावना, रिस्पेक्ट, रिगार्ड आदि आदि। ये दातापन का जितना गुण धारण किया होगा, इसका मतलब धरती को हमने मित्र बना लिया। और जितने दुनिया भर में भूचाल आएंगे, कुछ भी होगा, लेकिन वो भूचाल मेरी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि मैंने मित्र बना लिया। और मित्र कभी मित्र के प्राण नहीं लेता, उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही बाबा ने बताया, अंत में बाढ़ बहुत आएगी, सुनामी होगी, पानी के फ्लड। हा? पानी में कौन सा विशेष गुण होता है, शीतलता का और एडजस्टमेंट का। पानी होती है ना, तो पानी में, गिलास में पानी लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो कटोरी में, थाली में लो थाली में, चम्मच में लो चम्मच में। ऐसी हमारे में भी एडजस्टमेंट का ऐसा संस्कार हो, हर आत्मा के साथ हम एडजस्ट होके चलते चलेंगे, तो कभी भी जल जो है हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, चाहे जितनी सुनामी हो फ्लड हो, खास करके और बम्बई और जो ऐसे हरेक जगह के अलग अलग वो है, तो ये मृत्यु का कारण नहीं बनेगा। ऐसी हर तत्व को हम देखते चलें, वायु में कौन सा गुण है, हल्का रहने का, वायु हर चीज को ऊपर उठाती है। ऐसी कोई भी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में हम हल्का रहना सीखें बस, तो कभी भी साइक्लोन जितने भी आएंगे वो हमारे दुख अशांति मृत्यु का कारण है। तो इस रीति से अपने को देखते चलना है। जल अग्नि, अग्नि का क्या गुण है विशेष, क्या गुण है अग्नि का, हर चीज का रूप परिवर्तन कर देती है। तो ऐसे ही हम देखें, जो बाबा के सम्मुख था ना, देखते थे रोती हुई आत्मा आई, बाबा कहा ऐसा आपका रूप हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति की स्थिति का अनुभव करती जाए। ये तभी होगा, जितनी हमारी मंशा पावरफुल शक्तिशाली होगी, उतना उतना ये हम हर तत्व को अनुकूल करते चलेंगे। और अंतिम तत्व आकाश, विशाल। क्या विशालता का गुण है आकाश में, आकाश की इस विशालता के गुण के कारण ही वहां सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, और उसके द्वारा ही मोबाइल हो, रेडियो हो, टीवी हो, सारा दुनिया भर का कम्युनिकेशन उन सैटेलाइट के द्वारा होता है। तो ऐसा ही कम्युनिकेशन हमारा भी, किसी भी आत्मा से कभी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन ना हो। होता क्या है, जिनसे हमारे संबंध अच्छे होते हैं उनसे तो हम बड़े प्यार से बात करते हैं, और जिनसे संबंध अच्छे नहीं वो सामने से भी आएंगे तो भी हम नजर बचा के निकल जाते हैं, दूसरा रास्ता ले लेते हैं। तो इसी तरह आकाश जैसी इतनी विशालता हो, तो आकाश मार्ग से आने वाले जितने भी विनाश के साधन होंगे, रॉकेट, मिसाइल, बॉम्ब, कुछ भी होगा, वो हमारे मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। कहने का भाव क्या है, मंशा सेवा अपने ही लिए नहीं, बल्कि तत्वों के लिए भी, अन्य आत्माओं के लिए भी, और संबंधी उन सब के लिए, लेकिन सबसे पहले अपने लिए। और बाबा का ये देखा, इसीलिए इस संकल्प को रख के ही आज हम उठे हैं यहाँ से, कि अंत तक मुझे अपनी मंशा को इतनी शक्तिशाली बना लेना है। इसकी बहुत बड़ी मेथोडोलॉजी है, तो इसीलिए अभी हम सब बस बहन जी आ गए हैं, और ये आइए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
तो आप सभी ने प्यारे बाबा के अंतिम समय के पुरुषार्थ की बातों को सुनते हुए समझा कि मनसा सेवा कितनी आवश्यक है और उस मनसा सेवा का प्रभाव न केवल मानव पर न स्वयं पर लेकिन साथ साथ जो तत्व हैं उन पर भी पड़ता है और किस तरह से वो हमारे लिए ही लाभदायक होता है। तो ऐसी मनसा सेवा हमें करनी है। तो बहुत अच्छी बात है मोहन भाई ने सुनाई, तो हम उनका बहुत बहुत दिल से आभार करते हैं।